आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं न्यू साउथ वेल्स में मैकमान निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार विवेक सिंघा के साथ में। मैकमान निर्वाचन क्षेत्र पहले प्रॉस्पेक्ट के नाम से जाना जाता था और जैसा कि विदित है ये 1969 से लेबर की सीट है और वर्तमान में सांसद क्रिस बॉमन 2004 से इस सीट पर विराजमान है। तो आइए मुलाकात करते हैं इसी सीट पर लिबरल पार्टी के उम्मीदवार विवेक सिंघा के साथ। यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि विवेक जी कई चैरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं और उनका सबसे छोटा बेटा कुश सिडनी में पहला बच्चा था जिसे FOXGI सिंड्रोम से डायग्नोज किया गया था और जिसकी वजह से जीन थेरेपी क्योर के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की। तो आइए मुलाकात करते हैं विवेक सिंघा के साथ। विवेक जी नमस्कार।
नमस्ते अनिता जी, कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है मैकमान का, ये ट्रेडिशनली कह सकते हैं एक लंबे अरसे से लेबर के पास में है। क्रिस बॉवन की सीट है ये। क्या क्या वहाँ पर इश्यूज हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें आप कुछ काम करना चाहेंगे?
नीता जी, आई थिंक सबसे बड़ा इशू आजकल ऑलमोस्ट सभी एरियाज में ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स का है। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ने 0.25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, तो रफली अबाउट उससे भी द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स फैमिलीज पे रफली अबाउट $50 to $100 के करीब पर मंथ और प्रेशर आ जाएगा।
जी,
एक मेजर इशू है। और दूसरा जो आई थिंक हर एक एस्पायरिंग ऑस्ट्रेलियन का इशू है कि ये कैसे टैक्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है और मतलब कैसे टैक्सेस में चेंजेस आ सकते हैं, वो आई थिंक दूसरा इशू है।
जी, तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे?
अनिता जी, अगर हम मकमान का एरिया देखें तो ये बेसिकली मतलब फेयरफील्ड पैरामीटर से लेके ऑलमोस्ट सेंट क्लेयर तक का एरिया आ जाता है। इसमें लाइक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मल्टीकल्चरल लोगों का है, या 60% से ज्यादा लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन जो या तो खुद बाहर पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स बाहर लाइक ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आए हैं। तो इतने बड़े मल्टीकल्चरल एरिया में ऑब्वियसली एस्पिरेशनल ऑस्ट्रेलियंस का ड्रीम है कि उनके बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो और उनका फ्यूचर अच्छा हो। एक जो इशू बहुत स्टार्कली हमारे सामने आता है वो ये है कि मकमान की दो सराउंडिंग बाउंड्रीज में फाउलर और चारापेटा आते हैं। तो फाउलर से जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने इस बार रिजाइन किया और आपको श्रद्धान आया ही होगा कि लाइक वहां पे कृष्णा केनली को बिठाया गया। तो वहां पे इतने सारे यंग एस्पायरिंग यंग एडल्ट्स हैं जो चाहते होंगे कि वो यहाँ से खड़े हुए, बट लाइक यू नो ऑपोजिशन लेबर ने बाहर से कैंडिडेट्स को पैराशूट किया है। तो दिस ये क्लियरली दिखाता है कि मतलब लेबर का अपने एरिया के लिए उनका डिस्कनेक्ट है, वहां पे वो अपने एरिया के लोगों को बात करना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से लिबरल्स, मैं लिबरल पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, लिबरल पार्टी का आई थिंक दो स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं। एक तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है वो बाकी सारे जितने भी प्रोग्रेसिव या एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड कर सकता है, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म को अगर प्रमोट करना है
जी,
मेंटरशिप में लोगों को मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस से फेस करने के लिए उनको सपोर्ट करना है। तो आई थिंक हम सब मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। उसके लिए
जी, आपने इकोनॉमी की बात की है, सेंट्रल की बात की है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जो आपका एरिया है वहाँ पर इस समय क्या मुद्दे हैं? आपकी पहली जिम्मेदारी तो आपके निर्वाचन क्षेत्र पर है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में आपको ऐसी क्या कमी दिख रही है जिसमें आप सुधार लाएंगे?
अनिता जी, यहाँ पे जो अगर हम ज्योग्राफिकली एरिया की बात करें
जी,
क्योंकि ये सिडनी का काफी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के हब्स हैं, यहाँ पे काफी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, यहाँ पे वुलवर्थ्स का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो ट्रैफिक इन द लोकल एरिया इन पीक आवर ये काफी स्ट्रॉन्ग इश्यू है जो काफी लोगों को इम्पैक्ट करता है, और उसके लिए ऑलरेडी लाइक यू नो काफी प्रोग्रेसिव काम हो चुका है। ये एक ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से सभी लोगों को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, अगर हम और ये दिस इज ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा हब है और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो न्यूली अराइव्ड इमिग्रेंट्स, काफी सारे इमिग्रेंट्स जो पहली बार आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली जो अरबिक बैकग्राउंड से आते हैं या मिडिल ईस्टर्न इमिग्रेंट्स आते हैं, वो उनके लिए फेयरफील्ड एक सेंट्रल हब है
जी,
और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्पेशली सोशल हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का इशू बहुत बड़ा इशू है।
तो
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिससे सोशल हाउसिंग का मुद्दा एड्रेस हो सके, यू नो अच्छा एक्सेसिबल स्कूलिंग अवेलेबल हो, वो एक इशू है।
जी,
पिछले 9-10 सालों में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। जो सेकंड सिडनी एयरपोर्ट है बैजरीज क्रीक, मकमान से थोड़ा सा ही दूर बन रहा है, M7, M4 मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 3 फेडरल लिबरल गवर्नमेंट्स के पार्टनरशिप और उनके इम्प्लीमेंटेशन से हुए हैं। आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग, सोशल हाउसिंग और एस्पिरेशनल नीड फॉर पीपल टू फाइंड अ जॉब, तो लोगों को नौकरी मिले और इकोनॉमिक एक्टिविटी गारंटीड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ये
जी इन मुद्दों की बात तो हो ही रही है। मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहती थी कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें क्या कुछ कमी महसूस हो रही है आपको, क्योंकि ये जो सीट है ये एक लेबर की सीट है अभी तक, और क्रिस बॉबेन है यहाँ से, तो क्या कोई ऐसा क्षेत्र आपको लग रहा है जहाँ पर काम नहीं हो पाया, कहाँ पे कमी रह गई है जो आप उसमें सुधार लाएंगे?
अनिता जी, अगर आप फेयरफील्ड हॉस्पिटल का सर्च कर रहे हैं तो फेयरफील्ड हॉस्पिटल का हाल बहुत ही बुरा हाल है मेरे हिसाब से
जी।
ये एक इतना अच्छा एरिया है, यहाँ पे मतलब रेल लाइंस इतनी पुरानी सेटल्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, हॉस्पिटल बना हुआ है इस एरिया में, हॉस्पिटल शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड। मगर अगर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल का क्या हाल है, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, तो इसके ये क्रिस बॉबेन का एरिया होते हुए भी मतलब वहां पे लोगों को इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आई थिंक जो क्रिस बॉबेन है लाइक वो अपने एरियाज में अपने फैसिलिटीज को उतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं
जी।
53 ईयर्स से, पिछले 53 साल से ये एक रेड सीट रहा है या लेबर का एरिया रहा है
जी।
मगर जो काउंसिल है, काउंसिल लेबर नहीं है, काउंसिल इंडिपेंडेंस का है। अगर लेबर वहाँ पे सक्सेसफुल होता तो काउंसिल भी लेबर का होना चाहिए था। काउंसिल्स जो इश्यूज को एड्रेस करते हैं उसमें आई थिंक जो लोकल काउंसिल्स हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लोकल काउंसिल्स ने बहुत इनिशिएटिव दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया है जो लोकल फैमिलीज को बहुत ही इकोनॉमिकली अच्छा एंटरटेनमेंट का एवेन्यू प्रोवाइड करता है
जी। तो आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हॉस्पिटल एक चिंता का कारण है, आप चाहेंगे कि उसमें सुधार लाया जाए। और इसके अलावा आप रोड्स इम्प्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और पॉपुलेशन भी वहाँ बढ़ रही है, तो ये वो क्षेत्र हैं जिस पे काम करने की अभी बहुत आवश्यकता है।
बिल्कुल, मेरा मेरा कहने का ये भी मतलब था कि अगर हम देखें कि ये मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्रिस्पो उनका एरिया है,
जी
मगर ओवरऑल जो उस एरिया में एक्टिविटीज हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हुई हैं, वो सब नेशनल लिबरल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की वजह से रोल आउट हो रहा है।
जी
ये इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे क्रिस ब्राउन है। आई थिंक इट इज अ अचीवमेंट कि इन स्पाइट ऑफ क्रिस ब्राउन बीइंग देयर, ये सब प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए हैं।
जी, तो आपके निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई है, मुद्दों की बात भी हुई है, अब कुछ चलते चलते आपके बारे में भी जानना चाहूंगी।
बिल्कुल जी, लाइक मैं इंडिया से कोई 19 साल पहले आया था। मैं वैसे अभी यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ। मैंने इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाइक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन की थी और लास्ट कोई 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में टैक्स में और फाइनेंस में मैं काम कर रहा हूँ। पर्सनली फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव मैं शिमला से हूँ, मेरे वाइफ पालमपुर से हैं और हमारे चार बच्चे हैं। मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री का जो रीजन था वो या जो कैटलिस्ट था वो आई थिंक मेरा एक प्राइमरी फोकस ये है कि ऑस्ट्रेलिया इतना रिच कंट्री है, इतना प्रिविलेज्ड कंट्री है, यहाँ पे इतना ज्यादा रफली और अप्रोक्सीमेटली स्टैटिस्टिक्स ये है कि इंडिया में एक इंसान पे अबाउट $100 खर्च होते हैं हेल्थ पे, यहाँ पे एक इंसान पे अबाउट $8,000 खर्च होते हैं हेल्थ पे। हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, मेरा ये मानना है कि कोई भी फैमिली को, किसी भी बच्चे को सफर नहीं करना चाहिए। कोई चैलेंजेस, स्पेशली जो अवॉइडेबल चैलेंजेस हैं, जो बीमारियां हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं या एलिमिनेट की जा सकती हैं, वो एलिमिनेट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लाइक मेरे ख्याल से माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का
बिल्कुल
रीजन होते हैं।
जी,
मगर अगर या जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो सिर्फ फैमिलीज को नहीं, मतलब सिर्फ कम्युनिटीज को और सोसाइटीज को बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। मेरा सिर्फ ये फोकस है कि अगर हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स जो ये जो नेशन का वेल्थ है, इसको अगर हम प्रॉपरली वाइजली इन्वेस्ट करें और वेस्ट ना करें तो हम बहुत कुछ अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं।
जी,
हर एक चीज को करने के लिए फंडामेंटली गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना और सपोर्ट करते रहना वो जरूरी है।
जी विवेक जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने को ये मौका देने के लिए, आपके पास आपके साथ बात करने के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।